ओम शांति। मैं आशा करता हूं आपने जो भी सेशंस हुए हैं सभी को फुल एंजॉय किया होगा। एक बार हाथ खड़े करें, एंजॉय किया या नहीं किया? बहुत अच्छा। तो धीरे धीरे समय बीतते बीतते ये सत्र हमारे वैलिडिटी सेशन तक आज पहुंचा है। आज के इस समापन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा शिव की अवतरण भूमि पर आपका स्वागत है। अरावली की वादियों में बसा ये अद्भुत अद्वितीय अलौकिक परिसर ज्ञान सरोवर, इसमें आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा, कानून के कायदों को कंठस्थ कर लेने वाले विद्वान और विदुषी यहाँ विराजमान हैं, तो आप सभी का यहाँ स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हम आध्यात्मिक रूप से उसका समाधान कर सकें, इसके लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए और हम कोशिश करते भी हैं। हमारा लक्ष्य यहाँ आने का यही था कि आने वाला कल हमारा आज से बेहतर हो, है कि नहीं? इसी के लिए हम आए थे, यही प्रयास रहता है। तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ कोशिशें करते रहना चाहिए। तो एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष रखता हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को गरल के समंदर में भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की जो आज है थमा थमा सा वो चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। धन्यवाद। आज के इस सत्र को शुरू करने से पहले मैं हमारे अतिथियों को मंच पर आगमन के लिए निवेदन करता हूँ। बीके रमणीक पटनायक जी, एडवोकेट हाईकोर्ट ओडिशा, मंच पर पधारे। ब्रदर अमित पाल सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट जज बलिया, मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रदर जोगिंदर सिंह, प्रेसिडेंट ग्रुप CFO हीरो एंटरप्राइजेज न्यू दिल्ली, मंच पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें। बीके निशा दीदी, राजयोगा टीचर द्वारका दिल्ली, कृपया मंच पर पधारें। राजयोगिनी बीके लता दीदी, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। बीके मनीष भाई, एडवोकेट मेंबर जूरिस्ट विंग न्यू दिल्ली, कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अपने मुख्य अतिथियों का, मंच पर विराजमान अतिथियों का। मनीष भाई जी, अब हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, जिनकी परमपिता परमात्मा शिव की कृपा से, उनके आह्वान से आप सब यहाँ आए हैं। तो 2 मिनट उनकी याद में बैठते हैं, फिर कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हैं।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।
अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले।
अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगा, मंच पर आसीन हमारे अतिथियों को तिलक और बैज से उनका स्वागत करें। ये परंपरा और प्रथाओं से कानून भी अछूता नहीं है, तो ये इस परंपरा का स्वागत करने की परंपरा का हम यहाँ निर्वहन कर रहे हैं। मेहमानों का स्वागत करना भारत की पहले से ही परंपरा रही है। अमृतपाल सिंह जी का स्वागत हुआ, जस्टिस जोगिंदर सिंह जी का स्वागत हुआ है, बीके रमणीक पटनायक जी का स्वागत हुआ। ये परंपरा हमारी चलती रहे, हमारा हम आपस में इनका जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। बड़ा ही मनोहारी दृश्य है कि हम अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी बहने कल, जैसे कि हमारे डॉक्टर सचिन भाई ने बताया कि यहाँ पर हर व्यक्ति बड़ा ही अद्वितीय है, असाधारण है। साधारण व्यक्तियों से आप सब नहीं मुखातिब हो रहे, असाधारण व्यक्तियों से मुखातिब हो रहे हो। और आज मंच पर विराजमान हमारे अतिथि वैसे ही असाधारण प्रतिभाएं हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इतना अच्छा दृश्य है ये। आप सभी की तालियां बजती रहें, थोड़ा अच्छा रहेगा, इससे सुस्ती भी दूर हो जाएगी। अब मैं मंच पर डायस पर बुलाता हूँ कीनोट स्पीकर बीके रमणायक पटनायक जी को, जो एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा के हैं और मेंबर ऑफ जूरिस्ट विंग हैं। आपने उत्कल यूनिवर्सिटी से LLM किया है, 1981 में आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है ओडिशा हाई कोर्ट से। आप गवर्नमेंट के एडवोकेट रहे हैं 1995 से 1997 तक। आप ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्य बने हैं 1991 में। आप कई सरकारी विभागों के लीगल एडवाइजर रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्गार व्यक्त करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचा सेना, सब अतिथि और मेरे सामने बैठे हैं मेरे भाई और बहन, काफी दिन तक हम तो यहाँ बैठते थे श्रोता के रूप में। अभी एक अक्सर मिला है कुछ बोलने के लिए वक्ता के रूप में। मेरे बारे में तो थोड़ा वो भाई साहब ने बोल दिया है। इस ज्ञान में 35 इयर्स हो गया चलना, उम्र हुआ 70, आधा उम्र हो गया ये ज्ञान में। तो कुछ बोलने के लिए मेरे को लता दीदी ने बोला है कुछ, पहले बार मैं आपके सम्मुख हूं। 35 साल तक कभी भी ये चांस नहीं मिला है मेरे को यहां पर बैठने के और कुछ बोलने के लिए। उड़ीसा हाईकोर्ट में तो थोड़ा सरकार वकील था, अभी तक वो वकालत कर रहा हूं, काफी जूनियर्स भी है मेरे पास। मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहता हूं कि कैसे मैं ये इंस्टीट्यूशन में आ गया। आप सबके सम्मुख जो नथमल भाई बैठते हैं ना, सब आप पहचानते हैं उनको, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैं जहां पर रहता था ना, उस बगल पर वो एक आश्रम बनाया, और नथमल भाई एक बार मेरे पास आया। उस समय शायद मेरा वकालत 4-5 साल हुआ था, ब्रीफिंग कुछ नहीं था इस समय। वो एक बार आ गए मेरे पास, वो बोला कि भाई ओम शांति। ये ओम शांति का अर्थ तो हमको मालूम नहीं था, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में थे, ज्ञान क्या है हमको मालूम नहीं था। तो जब वो ओम शांति बोला, मैं बोला कि क्या बोल रहे हो आप? नहीं, नमस्ते। मैंने बोला ठीक है नमस्ते। फिर बोला कि आप एक बार हमारे आश्रम को आ जाइए। मैंने बोला क्यों? ये आश्रम शब्द मेरे को नफरत लगता था, और मेरे मन में ये था कि जो आश्रम को बुलाते हो कुछ रुपया लेने के लिए, मांगने के लिए। तो वो जब मेरे को बोला कि आप आश्रम में, मैंने बोला क्यों जाएंगे? नहीं, भगवान के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल जाएगा। आप तो जानते हैं वकील का काम क्या है, बकबक करना, बोलना। तो मैंने जब वो बात उनको बोल दिया कि भगवान के बारे में आप सुनाएंगे मेरे को मालूम नहीं आज। नहीं नहीं, आप जो जानते हैं ना भगवान के बारे में, आप एक बार आप सुनो। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ा सा ब्रीफ था, 5-7 ब्रीफ, अभी तो हजार हजार ब्रीफ हो गया है। तो वो थोड़ा सा नाराज होकर चला गया। फिर 15 दिन के बाद मेरे पास आ गया। मैं उनको देखकर थोड़ा जोश में आ गया। मेरे बोला आपको शर्म नहीं आता है, अब क्यों दो बार आ गए? लेकिन वो तो ब्रह्मा कुमार है ना, उनको सहन शक्ति उनके पास काफी था। वो बोला आज नहीं, मैं इसलिए आया हूं कि ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने के लिए मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं। ये भी शब्द मेरे पास नया था, ब्रह्मा भोजन क्या है। वो इतना सरल थे कि वो बोले कि ये प्रसाद है। मैंने बोला ओ ये बात तो बोलो ना प्रसाद, अच्छा उसके लिए कुछ रुपया देना पड़ेगा? वो बोला नहीं नहीं, मुफ्त में खाना पड़ेगा। मैंने बोला वो तो आजकल भी जहर खा देते हैं मुफ्त में, वो जो प्रसाद मिलता हो क्यों नहीं खाएंगे। और जिस दिन मैंने ये अन्न स्वीकार कर लिया, प्रसाद जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा भोजन, उस दिन से आज तक कभी भी एक दिन मैंने ये आश्रम जाना बंद नहीं किया है। आप तो जानते हो कि अकेलाता काम कितना डिफिकल्ट है, रात दिन समय नहीं मिलता है किसको बोझ को उतारने के लिए। मैं दो काम एक साथ कर रहा हूं, एक है फिजिकल ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करता हूं मुफ्त में, और एक है मेंटल, जो सब आते हैं कुछ उनके जो गम है चिंता है वो उसको थोड़ा मिटाने के लिए। अब जब कोई आते हैं मेरे पास, पहले मैं उनको मुक्त देखता हूं, सूरत को देखता हूं कैसे है। जब कोई रोना शुरू करते हैं मेरे पास, मैंने बोला आप क्यों आते हैं रोने के लिए यहां? अब थोड़ा हंस दो, थोड़ा मुस्कुरा लो, ऐसे ऐसे करके पहले मैं थोड़ा हल्का कर देता हूं कोई। तो मैं कहने का भाव ये है कि हम उकलत क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो मैं जब ये ज्ञान में आया ना, दो तीन चीज मेरे को अच्छा लगा। पहले मेरे को मालूम पड़ा भगवान कौन है। हम तो मंदिर में गए थे, जानते थे भगवान जहां भी देखो तू ही तू, भगवान सार विद्यमान है, सर्व विद्यमान है। लेकिन जब यहां पर आए, बस 3 लेटर मेरे को वो सुना दिया गट, GOD गट, जेनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर. ही हु डिजर्व्स दीज थ्री पावर्स, ही ओनली कैन बी रिगार्डेड एज गॉड, नथिंग एल्स. फिर मैनों को मालूम पड़ गया कि देवता कौन है और भगवान कौन है. आप सबको तो मालूम है ना, जो देवता होते हैं ना वो जन्म लेते हुए मरते भी है, भगवान इस चक्र में नहीं आते. एक सिद्ध हो गया मेरे को, इसलिए अच्छा लगा. क्योंकि मेरे बचपन से जब तक ज्ञान नहीं मिला था उस तक मैं भगवान को ढूंढ रहे थे. आपको एक बात मालूम पड़ेगा, संतोषी माँ को मालूम है आपको सब, संतोषी माँ, मैं उनका भक्त था थोड़े दिन के लिए. एक दिन मैं पूजा करते थे और रोना शुरू हो गया मेरा. मैंने बोला कि आज संतोषी माँ मेरे को पहले दिखा देगा, मेरे को पहले पूछेगा. आपको शायद ये सुनकर शायद वो वास्तविक तो स्वीकार नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं जब गया ना उस पर, एक मंदिर है बीच में, एक थोड़ा स्थान है, फिर है जो जहां पर सब भक्त लोग जमा होते हैं, मैं उस पर घंटा बढ़ता था, वो सब पिटाता था उस घंटा. वो जिस पर संतोष में आ रहे थे ना सवार होते, वो चला गया उस पर. मैंने सोचा तो वो पहले मेरे को पीछना चाहते. आपको ये विश्वास नहीं होगा, ये तुरंत मेरे पास आ गया एक सेकेंड में और पूछा, बालक तुम क्यों रोते थे? फिर कुछ समय के बाद वो एक बात बोला कि अब तो यहां से ऊंच जाएंगे. मैं तो उनका भक्त था, मेरे को मालूम नहीं था कि एक दिन मैं संतोष मां का हाथ छोड़ देंगे, मालूम नहीं था. बड़ा भक्त था, यज्ञ में बैठता था, लेकिन ये सच हुआ क्योंकि ये भी दैवी आत्मा था उस समय. और कौन सा उस स्थान पर जाएंगे मेरे को मालूम नहीं था, क्योंकि वो देवी थे और मैं भगवान का हाथ पकड़ लिया. अभी दो तीन शब्द आपको बोलेंगे जो मेरे अनुभव है, एक्सपीरियंस है. आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू. हम 44 ईयर्स हो गया ओकलात. जब भी मैं कोई डकैत का केस कर रहा था ना, एक बहुत सुंदर आदमी थे राजकुमार जैसे देखने के लिए. मैंने बोला आप क्यों डकैत कर रहे हो? बोला ये क्या करो, कैसे जिंदा रहूंगा? मैंने बोला कुछ अच्छा काम करो ना, छोड़ दो उसको. आप जब पुलिस अरेस्ट कर ले जाएंगे आपको अपमान होगा, घर लोगों को होगा, शाहीलों को होगा, अच्छा नहीं लगेगा. बस इतना ही मैंने बोल दिया उनको. ये तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम था, वो छोड़ने से हमारा तो जो रोजगार हो तो कम हो जाएगा. फिर मैंने बोल दिया. दो तीन साल हो गया, गुजर गए. मैं और मेरा युगल स्कूटर पर गए थे, उस कार नहीं था, स्कूटर पर जा रहे थे. एक हनुमान के मंदिर के सामने, स्कूटर के सामने एक आदमी आ गया. वो जैसे लगा कि वो पुजारी है, वो इसे हाथ रख दिया और प्रणाम किया, पैर पकड़ा. मेरे को बोला साहब आप पहचानते हो मेरे को? मैं बोला ना नहीं, देखा है कहां लेकिन मालूम नहीं कौन है ना. मैं वही डकैत है जिसको आपने एक बार बोल दिया कि डकैत छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया. दूसरा बात है मैं क्यों बोलता हूं, हम प्रोफेशन में इतने लग गए हैं कि सुसाइड पर नजर नहीं है हमारा, हम सिर्फ हमारा पर नजर है, कैसे करके हम इनकम करेंगे, अच्छा तरफ रहेंगे, किसका मकान देखा, किसका गाड़ी देखा, कुछ ना कुछ देखकर हम बदल जाते हैं और रुपया के पीछे भागते भागते कहां पहुंच गए. एक दिन तो जाना है ना. तो मैं जब एक बार गवर्नमेंट वकील था हाईकोर्ट में, उस समय भी मेरा कार नहीं था, स्कूटर पर जा रहा था. एक देखा एक औरत, वो इस तरफ से उस तरफ जा रहा. मैंने देखा वो लेपर्सी है, उनको जो दो पैर नहीं था और रबर का कोई ऐसे लगाकर चल रहा था ये. फिर मैंने स्कूटर थोड़ा आगे में रखकर उनके पास आए 10 रुपया देने के लिए. उनको बोला मासी रुपया लो। वो बोला बाबूजी कितना रुपया है? मैंने बोला कि आप देख नहीं सकते हैं। नहीं, मेरा आंख भी नहीं है। जब मैंने बोला 10 रुपया है, उस समय का बात 96 और लाइक दैट, तो बोला भगवान आपका मंगल करे। वो हाथ बढ़ाया, देखा कि वो अंगूठी भी नहीं है उनके पास, बस इतनी है। मैं 10 रुपया दे दिया और स्कूटर पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। सिर्फ रोना नहीं, भगवान को भी गाली देना शुरू कर दिया। तो उस समय का आवाज आया, आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सच बात है। दिल साफ था, इसलिए भगवान का साथ मेरा बातचीत हुआ उस समय। मैंने बोला भगवान, जिसको आप कुछ भी मंगल नहीं करते हो, वो आपको बुलाते मेरे मंगल के लिए। तो उस समय भगवान की आवाज आया, बच्चे ये कोर्ट की दरबार नहीं है, ये भगवान का दरबार है। मैंने बोला क्या दरबार है? उनको इतना दंड देते हो और आप कहते भगवान के दरबार है? वो ऐसे बोला कि मनुष्य को भगवान के विचार में हस्तक्षेप करना मना है, सख्त मना है। मैं थोड़ा नरम हो गए। फिर पूछा कि तो फिर क्या कर सकेंगे हम? तो वो बताना चल रहा शुरू कर दिया। वो बोला कि आप एक बार दुकान कब गए हैं क्या? मैंने बोला इसमें क्या तल्लुक है इसके साथ? ना अरे पहले बोलो ना, दुकान गए हैं? हम बोले हाँ। तराजू देखा है? हाँ। एक तरफ क्या पड़ता है? बटकरा पड़ता है ना, वेट्स, और दूसरे तरफ सामान। ठीक है, ये तो सही बात है, लेकिन उसके साथ एक केस का क्या तल्लुक है? वो बोला कि नहीं नहीं, जब वो बटकरा नीचे हो जाता है ना, वो जो सामने वाले जो कस्टमर होते वो बोलो और डालो थोड़ा सामान, और जब सामान ज्यादा होता है तो बोलता है जो मालिक होते ना, वो थोड़ा निकाल देते। लेकिन ये सही है, ये वर्ड जितना ये सामान इतना ही है, वो कौन कहेगा? उस पर एक कांटा है। मैंने बोला ठीक बात है। वो बोला कि ये है कर्म, ये है फल, और मैं हूं धर्म कंटा। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा, मेरा आंख खुल गया। अरे हर दिन हम दुकान पर जाते हैं, लेकिन इसमें ज्ञान भरा हुआ है, ये मेरे को मालूम नहीं था। मेरा रोना बंद हो गया थोड़े लेकिन। फिर ये बोला ना, वो अभी देख रहे ना, वो जो सजा भोग रही है, इसीलिए तरस आता है मन में। लेकिन वो जो कर्म किया था पिछले जन्म में, वो उसको तो देखा नहीं, और जब देखे होंगे ना, वो बोलेंगे आप क्या, वो तो काम है, उनको ज्यादा जरूरत है दंड सजा। फिर बोला क्या, अरे मैं तो सबका पिता हूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। अब देखता हूं जो मां होते हैं ना घर में, वो बच्चों को भी सजा देते हैं, पिटाई करते हैं। किसी लिए? मार देने के लिए नहीं, उनको सुधार करने के लिए। और कोई मेरे बच्चों को अंगूठी ना दिखाए, इसलिए मैं उनको सुधार के लिए ऐसे सजा दे रही, ये मेरे बच्चे हैं। आपको तरस आया ठीक है, लेकिन वो जब तक रिपेंट नहीं किया है, वो तब तक वो बदलेंगे नहीं, इसलिए सुधारने के लिए इसे सजा दे। सेकंड बात है, मेरे थोड़ा सा अनुभव के बारे में बोल दिया। दूसरा, कैसे धुआं मिलता है? हम तो काफी सीनियर एडवोकेट से बैठे हैं, मेरे से भी ज्यादा सीनियर है। धुआं कैसे मिलता है, एक बार मैंने जान लिया। एक गरीब आदमी आए थे, उनका केस खत्म होने के बाद जब बाहर आया ना, वो रोना शुरू कर दिया। वो धोती पहनता था और कुछ नहीं। मेरे को बोला सर आज आपको रुपया नहीं दे सकेंगे। मतलब क्यों ना, वो टाउन बस में आते थे ना, वो चोरी हो गया कहां। तो मैंने फिर बोला तो फिर क्या करूंगा? मैं अगले बार आपको दे दूंगा। फिर खड़ा हुआ, मतलब ठीक है आप चले जाओ। नहीं साहब मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो रुपया नहीं है, मेरे को 20 रुपीज दे दीजिए, 20 रुपया हम उसमें चले जाएंगे घर। नजदीक था, मैंने बोला देखो वो रुपया भी नहीं देते, मेरे फीस नहीं देते, फिर मेरे से मांगते है रुपया। फिर मैंने मेरा जो विचार है ना उसको थोड़ा बदल दिया, ठीक है 20 रुपया का काम है दे दूं, दे दिया। वो बोला कि अगले बार आपका फीस और ये 20 दोनों मिलाकर दे दूंगा। मैंने बोला वो ठगी है, वो दे ही देगा। लेकिन अगले बार जो डेट हुआ ना वो आया, पैर छूकर बोला कि आपका फीस है और ये 20 रुपया आप जो दिए थे उसको ले लो। मैंने बोला नहीं, दान दिए दिए चीज को वापस नहीं लिया जाता है, उसको मैंने दे दिया दान के रूप में। वो क्या बोला आपको मालूम है, हे प्रभु उनका मंगल करे, इसे हाथ ऊपर से टेक दिया। मैंने बोला देखो आपको कितने मेरे को दूध दिया, धुआं दे दिया, 20 रुपया का धुआं मेरे ऊपर तो भरती भरपूर कर दिया, कितना अच्छा लगा मेरे को, ये है धुआं। आज तक देखिए मेरे को 70 साल लगभग हो गया, चश्मा नहीं लगाता हूं, ये भी धुआं का काम है। तबियत ठीक रहा है, काफी 200, 300, 400, 500 किलोमीटर एक साथ चल रहा हूं को केस के बारे में। लास्ट, क्योंकि इतने भाई बहन बैठे हैं कुछ सुनाने के लिए, लास्ट एक बोलूंगा। हम सुसाइड पर रहते हैं, सुसाइड का ख्याल रहता है हमको? नहीं, हम खुद के बारे में सोचते हैं। जब तक सुसाइड के बारे में ख्याल नहीं चलेगा ना, तब तक हम अच्छा नींद नहीं सो नहीं सकेंगे। कुछ सोचा है कभी हम क्या कर रहे हैं सुसाइड के लिए? एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, गांव की गाय जन तो काव गाय, वो भी पशु है, जानवर है, हम मनुष्य है, कितना पढ़े लिखे हुए, कितना ज्ञान है हमारे अंदर में, ये तो पशु है। लेकिन जरा सोचिए ना, वो सोसाइटी के लिए क्या करे और हम क्या करे? हम पैसा के पीछे, मान सम्मान के पीछे भाग रही है और वो क्या कर रही है? वो दूध देते हैं जिससे दही होता है, घी होता है, चीज होता है, क्या क्या चीज देते हैं? ये जब तक जिंदा है वो भी देश चलते हैं, दे चलते हैं, दे चलते हैं। मरने के बाद भी उसका मांस होता है ना, वो जंतु लोग खाते हैं, चमड़ा जो होता है वो हम पहनते हैं, जो सींग होता है वो काम करते हैं ना, जो पनिया कहते हैं ना उस काम में लगता है, क्या क्या चीज। और जो अस्थि होता ना वो सार के रूप में काम देते हैं, खेती में जो दिया जाता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। मरने के बाद जरा सोचिए, हम जब मर जाएंगे हम क्या करेंगे? जिंदा तो कुछ नहीं कर पाए, मरने के बाद क्या करेंगे? इतना ही थोड़ा सा क्या हो गया आज, इतना ही है। तो है मेरे भाई और बहनों, हम इतने ही करना चाहिए कि जाने से पहले, छुट्टी लेने से पहले हम कुछ करके दिखाना है। जो सब कुछ जो भी हमारा समय आए हैं कनेक्शन में आए, वो बोलेंगे ये सचमुच एक देवता थे, देवी थे, ये मनुष्य नहीं थे। कोई भी गांव में अच्छा आदमी मर जाते हैं ना, वो लोग बोलते वो तो जैसे देवता थे। और कोई कोई जब गुजर जाते मर जाते, वो कहते अच्छा हुआ शांत हो गया हमारा गांव। तो ये आपके ऊपर है, आप देवी बनेंगे और डेविल बनेंगे, ये आपके ऊपर है। ये ज्ञान इसीलिए है कि एक बार मैं एक रिक्वेस्ट करके छुट्टी लेंगे आपसे, जो कुछ करें ना उससे पहले एक काम कीजिए, एक काम सिर्फ 3 मिनट, इतना नहीं समय मिलता तो 1 मिनट जो कुछ शुरू करने चाहते हो ना, पहले प्रभु को याद करो, हे भगवान आ जाओ मेरे पास। जब मैं जाता हूं ना बाहर, 3 चीज भगवान के साथ बातचीत करके जाता हूं। एक बात है भगवान आप साथी बनकर रहना, दूसरा साथ देते रहना, और सारथी बनकर मेरे को चलाना। ये तीन चीज आप भगवान को हर कदम में मांगते रहो मांगते रहो। लास्ट हम क्यों सोचते भगवान सुनते नहीं? आप जो भी बैठे ना सोचते कि भगवान चैतन्य और जड़ है, भगवान चैतन्य है, तो फिर आप जो बुलाते वो बोल सुनते नहीं क्यों? छोटे बच्चे में जितना अकल है हमारे अंदर में नहीं है। छोटे बच्चे पर होता है ना, उनका माँ जब किचन में काम कर रहे थे तो झट दौड़ दौड़ कर चला आता है इवान के पास, और हम बुलाते हैं भगवान को, वो क्यों नहीं सुनते हैं? एक बार ट्रायल करो, दिल के साफ करो, भगवान का साथ बात करो, वो सुनेगा जरूर। मेरा जब ब्रेन हेमरेज हो गया था मेडिसिन लेने के बाद, डॉक्टर होपलेस हो गया, वो बोला कि जाने वाला है। उस समय जो मेरा अनुभव है वो तो 2-3 घंटे का काम, बॉम्बे में ट्रीटमेंट हुआ, अच्छा हुआ, कैसे ऑपरेशन करने के लिए ठीक हो गया सब कुछ, लेकिन भगवान कैसे बंद कर दिया। जब उस समय मेरा ऑपरेशन होने वाला था ना, हो गया था, तो आज तक तो आपके सामने नहीं खड़े होने वाला था। तो मैंने सोचा कि भगवान आज तक जिंदा रखा है कुछ सेवा करने के लिए, आज तक मैं कर रहा हूं, और मेरा जो प्रोफेशन वो भी सुंदर भाव से चल रहा है, सुरखुर से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। बस 3 मिनट शुरू से, और जब सुनने के लिए जा रहे हैं ना, बाबा को एक बार पूछ लिए, बाबा मतलब भगवान को पूछ लिए, आज कुछ अच्छा काम किया है पूछ लीजिए। हम संसार में आए कुछ अच्छा काम करके जाने के लिए? हम जानवर नहीं है, हम बुद्धिजीवी है, आइनजीवी है, तो ऐसे काम कीजिए। जब सोने से पहले बाप को पूछेंगे ना, जब नहीं किए है थोड़ा सा आपको पनिशमेंट दे दीजिए, ऐसे करके भगवान मेरे को दोबारा मौका दीजिए, कल से मैं अच्छा काम करूं। और जब मरने के बाद सब मेरे पास आएंगे, उनके आंखों में आंसू आ जाएगा, ये तो सचमुच हमारा देवता थे, देवी थे, बस यही हमारा जिंदगी का मकसद है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बीके रमणिक पटनायक जी का, आपने बहुत अच्छे अनुभव हम सबके साथ शेयर किए। आपने अपना 44 साल का जो अनुभव है केवल 20 मिनट में सार रूप में समझा दिया कि भगवान को हमने कैसे याद करना है, कैसे उसको याद करना बुलाना है। अब मैं ब्रह्मा कुमारी दीदियों से निवेदन करूंगा कि MV रमेश प्रिंसिपल जी का स्वागत करेंगे, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिविजनल जज तेलंगाना। आप जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। बहनें बैज पहना रही हैं और तुलसी का पौधा आपको सौगात में दिया जा रहा है। ये एक संदेश है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। और मैं अभी निवेदन करूंगा MV रमेश जी से कि वो आप सबके साथ अपना अनुभव साझा करें। आप भी ब्रह्मा कुमारी के सदस्य बने हुए हैं बहुत समय से, तो आप अपने उद्गार व्यक्त करें।
ओम शांति। माई डिवाइन प्रणाम्स टू दी डिवाइन गेस्ट ऑन दी डायस एंड ऑफ द डायस। बिफोर sharing my experience and takeaways of this national juries conference, I request all the brothers and sisters to maintain silence for 1 minute to invoke the blessings of Lord Shiva. Thank you very much. In judicial parlance, there is one old proverb: silence is gold, speech is silver, arguments are iron. And I also remember on this occasion the godly versions and directions: don't take decisions while you are angry. Don't make promises while you are happy. Sometimes in happy mood we make promises and at future may not be possible to fulfill the promises. You all know this Juris Conference aim and objective is to refine the judicial fraternity members, because in the judicial administration, either civil or criminal administration of justice, the role of advocates is very significant and important. The topic chosen and coined is very unique and divine itself. Our qualification, basic qualification for practicing an advocate is LLB. You all know. The divine meaning of this abbreviation is we must strike balance between law and love. That is why LLB, love and law balance. Then only you will become a good jurist or a judge, as the case may be. Wherever you have to apply law, you have to apply the same within the four corners of the statutes. And wherever it is required to render justice and dharma, you have to be lawful. If you strike the balance between these two, love and law balance, then there will not be any tension. For the past 31 years, I have been rendering services as a judge. I have seen many advocates as the moment they come to the court, especially for interim relief like bails and injunctions, they are very stressed and they expect delivery and result in their favor, irrespective of the facts. So my sincere advice is not to personalize either with the cause of the action or the facts of the case. If you personalize, then you will be disappointed sometime. That's why our uniform is also very unique. Over the ropes, we wear black coat and gown with the collar band. But inside, our uniform is white dress. It itself has a distinctive meaning and aim. You have to counsel the parties because you are removing the sorrow or grief or inconvenience or discomfort of the litigants. So to the symbolic, you are wearing black coat and gown. But you should be detached. You should be like a trustee. And you should not have such grief and sorrow in your personal life. That's why the inner robes are white dress. It's a mandatory for an advocate. And the outer robes are black, because you are the master bestower of happiness and remover of sorrow. which is the divine function of the Almighty God. In my opinion, our profession is a very divine. I call it as a temple of justice, a very court, right from civil judge junior division at lower rank up to the Supreme Court of India. Every court is a temple of justice. There are four temples, you know: Devalai, Vidyalai, Arogyalai, or Nyayalaya. So it is a temple. You are all the priests advocating for the truth. See, the entire endeavor of a trial or an inquiry or an adjudication of a dispute is to unearth the truth and to arrive at the truth. And very popular slogan of Supreme Court of India, Dharmo Rakshita Rakshitaha. So if you are the protector of Dharma, it will protect you. So with these basic features, either an advocate or a judge has to function at his own level. Before leaving these divine premises, I request all the brother advocates or sister advocates to maintain your own personal lifestyle as an advocate. Take a small goals. For example, in your all briefs, whatever the oldest case, you take up that case and see that it is finished. When a party approaches you for a cause or a brief, please counsel them first of all. Counsel them as a head of the family. And there you should not act like an advocate. There is a subtle distinction between advocate and a counsel. Counsel has to advise them, guide them. Because our slogan is, you all know the best legislation of the 1987 is the Legal Services Authorities Act. Under the said act, there are three LAs. You all know: legal awareness, legal aid, legal advice. These three are the edifice of the legislation. Because you all know, once the matter is compromised between the parties, both parties are happy. And the matter settled before Lok Adalat is a final decree of the civil court, directly executable, and even the court fee paid is refundable. There is no appeal system against the award of a Lok Adalat. If you make them parties to unite, there is no question of winning and losing, and it is win-win situation, so that you will also win the hearts of the client. And if you make the litigations settled at the initial stage, especially family disputes matters, partition matters between the family members, disputes between brothers and family members. The CPC itself indicates that it is a fit matter to settle the matters across the bar. So small aims and objectives have to be keep in mind, and also render services, free services to the poor people, underprivileged, and take the priority of the cases of where the woman is victim, children are the victim. If you prioritize your own pending cases, then it will give you a lot of peace and space to continue your hardcore contested matters. You all know the Supreme Court of India has designed policy of 5+0. All the 5-year-old cases have to be disposed of and made the court free from the said 5-year-old cases. I am very proud to say that where I am now working as a principal district and sessions judge, I made my district and sessions court as free of 5+0 cases. Incidentally, I am also in charge of the POCSO court. I also made the set court as free from 5+0 cases. It is all done only with the cooperation of the bar. Bar and bench is a two sides of a same coin. And unless your cooperation is there, we cannot achieve this goal. It is also not out of the place and quite significant to inform you that we need the cooperation and coordination of 5 parties to dispose of a case. I hope you all will agree with me. If you want to take a morsel of food, you need the cooperation of these 5 fingers. Is it not? So also, to dispose of a case, we need the cooperation and coordination of 5 parties. Both parties, petitioner and respondent, both counsel, petitioner's counsel and respondent's counsel, and the presiding judge. If these 5 are united, then only a case can be disposed of. That's why under the Advocates Act, all the advocates are designated as the officers of the court. Do you agree? So, we are all the officers of the court. So, unless we render proper guidance and cooperation, we can't dispose of a case. So, it is not the judge alone who can do it. One High Court judge has come to the inspection to the one district, and in the docket explosion, he noticed BNR, 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 BNR. Generally, what is BNR? Both not ready. Then, out of curiosity, the judge has called on the bar also. Visited the Bar Association room and inquired why these many cases are pending here and your cooperation is 0. Then the advocate said, "Sir, it is not both not ready, it is bench not ready." So sometimes very weak appreciation of the facts and not able to take quick decision. Our old saying is, hurried justice is buried justice. Delayed justice is denied justice. So either way it is bad. We have to strike the balance. In striking the balance, unless the bar and bench feels and in awareness that our function is divine function, we are the priests of the temple of justice. The biggest charity in this world, as per the Almighty God, is bestow happiness. So that is the... So if you want to give happiness to the clients, you please make expedite trials and cooperate to the bench. With the another takeaway, I will just conclude my message. Please be work oriented only, then only the result and money will follow you. And if you feel that it is divine function, then only we can strike the balance between these two slogans and render justice to the people, needy people, at the earliest point of time. Justice Rajshekhar Reddy Sahib is not feeling well, that's why he asked me to convey his message also at this function. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद एमवी रमेश भ्राता जी का. आप डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज हैं तेलंगाना में, सिटिंग जज हैं वर्तमान में, और आपने बहुत अच्छा अनुभव अपना सुनाया. लव और ला का बैलेंस हमें कैसे रखना है, और आपने बताया दीवार और बेंच दोनों सिक्के के एक पहलू हैं, दोनों आपसी सहयोग से सामंजस्य से चलते हैं. आगे भी इसी प्रकार से सामंजस्य एक दूसरे का जरूरी रहेगा. अब मैं आमंत्रित करता हूं ब्रदर अमित पाल सिंह जी को. आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं बलिया यूपी में. आप 1993 में पीसीएस न्यायिक अधिकारी बने, और पहली पोस्टिंग आपकी एटा जनपद में हुई सिविल जज के रूप में, और आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बने. इसके बाद आप बागपत, अमरोहा, नैनीताल, बहराइच, आगरा आदि कई जगह अपना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का पद संभाले थे. वर्तमान में आप बलिया में हैं, और आप अपना अनुभव बताएंगे और हम सभी के साथ साझा करेंगे.
ओम शांति. सबसे पहले मंचासीन बीके राजयोगिनी श्रद्धेय पुष्पा जी, बीके श्रद्धेय निशा जी, और मंचासीन सभी अतिथिगण, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई बीके प्रदीप जी, और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण, देवियों, सज्जनों, और ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े सभी सम्मानित न्यायविद, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं जूरिस्ट विंग ज्ञान सरोवर इकाई माउंट आबू द्वारा यह अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. इसके साथ ही मैं विशेष रूप से ब्रह्म कुमारीज प्रकोष्ठ बलिया जालौन उरई में प्रभावी रूप से वहां के प्रकोष्ठ का संचालन कर रही बड़ी बहन श्रद्धे मीना जी और छोटी बहन ब्रह्म बी के सरता जी को भी नमन करता हूं जो मेरे समक्ष उपस्थित हैं, जिनकी वजह से अपने जालौन स्थान उरई में कार्यकाल के दौरान प्रवास के समय मुझे ब्रह्म कुमारी के संस्थान से जुड़ने का मौका मिला और आज मैं यहां भी उन्हीं के सहयोग से और उनके उन्हीं के प्रोत्साहन से उपस्थित होकर एक बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त करने का मौका मिला है। आज की कॉन्फ्रेंस का विषय कानून, समाज और अध्यात्म, एक संतुलित दृष्टिकोण का जहां तक प्रश्न है, ये एक बहुत ही सामाजिक विषय है, सामिक विषय है और आज हम सबको इस बारे में एक गहन विचार करने की भी आवश्यकता है। उसके मुख्यतः दो कारण मेरी समझ में आते हैं। वैसे तो मुझे ऐसा कोई अवसर मिलने की उम्मीद नहीं थी या ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था, तो मैंने इस विषय पे कोई अध्ययन नहीं किया है और ना ही कोई तैयारी की है, लेकिन मैं पिछले एक लंबे अरसे से एक न्यायिक अधिकारी के रूप में भिन्न भिन्न पदों पर उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत रहा हूं, तो मुझे वहां कानून के प्रभावी रूप से अमल में लाने और कानून के संचालन और वादकारियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने में बहुत सारे अनुभव हुए, वो एक अलग चीज है। लेकिन मूलतः एक तो कानून वर्तमान में जिस तरह का है उसका हमारे समाज से और हमारे अध्यात्म से किस तरह का संपर्क है, किस तरह का संबंध है, एक ही महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या जो वर्तमान में कानून भिन्न भिन्न श्रेणी के उपलब्ध हैं, क्या उन्हें हम प्रभावी रूप से अमल में ला पा रहे हैं। बड़ी आसानी से न्यायालय पर, न्यायालय के अधिकारियों पर, न्यायालय में बतौर अधिवक्ता कार्यरत लोगों पर देरी करने का एक आरोप लगता रहा है, लेकिन उसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे वस्तुस्थिति को, तो सबसे बड़ी जो इसकी मूल समस्या है या मूल कारण है, वह वादकारियों की में नैतिकता, अध्यात्म और समाज के प्रति उदासीनता इसका मुख्य कारण है। क्योंकि जो मेरा बड़ा कटु अनुभव रहा है कि कानून हर बिंदु पे हर क्षेत्र के लिए उपलब्ध है, लेकिन हम कानून का सदुपयोग करने के लिए कानून नहीं मानते। हमारा प्रयास हमेशा कानून का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है और किस तरह से कानून का दुरुपयोग करके किसी भी प्रकरण को अधिक से अधिक समय तक लंबित रखा जा सकता है। जैसे मेरे साथी वरिष्ठ तेलंगाना से आए प्रिंसिपल जज अभी बता रहे थे कि लोक अदालत के माध्यम से भी एक प्रयास किया गया कि लोगों को सुलह समझौते का अवसर प्रदान कर उनके विवादों को समाप्त किया जा सके, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग उस चीज को टालते रहते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से प्रकरण को जारी लंबित रखना चाहते हैं और उसके लिए वो उपलब्ध कानूनी प्रक्रियाओं का भरपूर दुरुपयोग करते हैं, जिसमें हमारे अधिवक्तागण भी असहाय रहते हैं और संबंधित न्यायिक अधिकारीगण भी असहाय रहते हैं। जहां तक आज के विषय का प्रश्न है, जहां तक कानून की बात है, जो कानून की सबसे प्रचलित और सबसे सामान्य परिभाषा है वह यह है कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। कानून व्यवहारिक बुद्धि है। और व्यवहार व्यवहारिक इसके साथ ही जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है वह समाज है, और समाज को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि समाज लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक साथ रहने और काम करने के लिए सहमत होते हैं, और इसी साथ रहने की सहमति के व्यवहार पर आधारित होती है, और यहीं से नैतिकता का जन्म होता है। अब नैतिकता के साथ में जो नैतिकता का मूल आधार है वह आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और आध्यात्म कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से ये इस तरह के तीनों विषय हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। लेकिन एक तो जो वर्तमान स्थिति है कानून, समाज और अध्यात्म की, उसमें भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, और इससे इन सबसे ज्यादा जो सुधार की आवश्यकता मुझे इस दौरान महसूस हुई है वह हर व्यक्ति विशेष से संबंधित है। हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके कि इसकी वजह से देर हो गई, उसकी वजह से देर हो गई, उसने काम नहीं किया, लेकिन हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं हम ही उसके मुख्य भागीदार हैं, और हम जो काम जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से काम कराने के स्थान पर उसे किस तरह से देरी करके उसका दुरुपयोग करके उसका लाभ उठाया जा सकता है, इसके लिए ज्यादा प्रयासरत रहते हैं। तो और इसके एक दूसरी वजह यह है कि धर्म के नाम पे अध्यात्म और नैतिकता को भी हम बहुत दूर ले गए हैं और उसे कानून से भी दूर कर दिया है। तो आज के कानूनों में नैतिकता और अध्यात्म का अभाव स्पष्ट से देखने को मिलता है, और उसका बचाव ये लिया जाता है कि क्योंकि वो धर्म से संबंधित है तो कानून धर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारे कानून सिर्फ धर्म के आधार पर धर्म की सुरक्षा हेतु भी बनाए जाते हैं। तो अंततःगत्ता जो मेरा सोचना और मेरा मानना है कि जो दायित्व ब्रह्म कुमारीज की इस न्यायविद प्रभाग राजयोग एजुकेशन एंड फाउंडेशन ने उठाया है कि अगर हम हर व्यक्ति विशेष को इस तरह से शिक्षित कर सकें और उनकी चेतना को इतना जागृत कर सकें कि वो किसी को दुख ना दें, किसी से दुख ना लें, सबको सुख दें और सबसे सुख लेने का प्रयास करें, तो अगर कानून और समाज इस ढांचे के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो मैं समझता हूं कि उससे उत्कृष्ट समाज कोई हो नहीं सकता। और जैसी कि धारणा है कि धीरे धीरे कलयुग समाप्त होने जा रहा है और हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही प्रयासों से हम हर व्यक्ति विशेष को इतना जागरूक और चेतना युक्त करने में अगर सफल हो जाते हैं तो हमारा समाज, हमारा कानून और हमारा अध्यात्म और अच्छे प्रभावी रूप से कार्य करने में सफल रहेंगे। एक दूसरा मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, ना ही मैं इसके लिए तैयार भी था, लेकिन मैं बस एक दो बात इस बात के लिए और कहना चाहता हूं कि मुझे मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि मुझे लगभग 3 दिन का समय यहां गुजारने का मौका मिला ब्रह्म कुमारी के इस संस्थान में। और जहां तक इस अनुभव को बयान करने की या इस अनुभव के बारे में बताने का प्रश्न है, उसके लिए मेरे पास में शब्दों का बहुत अभाव महसूस हो रहा है, क्योंकि यहां की ऊर्जा, यहां का सारा पूरी संरचना इस ज्ञान सरोवर परिसर की इतनी अलौकिक और इतनी भव्य है जिसे वर्णों में व्यक्त किया जाना कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता अमृतपाल सिंह जी का। आपने कितने सुंदर शब्दों में बताया कि नैतिकता और आध्यात्मिकता कानून से अलग रखने का परिणाम आज हम सब देख रहे हैं समाज में। आपने कितने अच्छे से बताया कि वर्तमान समय कानून के सदुपयोग की बहुत बहुत जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमृतपाल सिंह जी का। अब मैं निवेदन करता हूं ब्रदर जोगिंदर सिंह जी को, आप प्रेसिडेंट एंड ग्रुप सीएफओ हीरो एंटरप्राइजेज न्यू दिल्ली से आए हैं, आप अध्यक्ष हैं, ग्रुप अध्यक्ष और ग्रुप सीएफओ हैं हीरो मोटोकॉर्प के, और आप हीरो के कई ब्रांचेस के प्रबंधक भी रहे हैं। आपने एक आपको कई समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं उसके योगदान के लिए आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आप एक कुशल गायक और कविता लेखक भी हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं भ्राता जोगिंदर सिंह जी को, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
ओम शांति। मंच पर आसीन राजयोग टीचर निशा जी, राजयोगिनी लता दीदी और सभी माननीय गण, और इन सब से बढ़कर आप सब लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी संस्थान का, जिन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार। सबसे अंतिम वक्ता होने का बहुत फायदा भी होता है और नुकसान भी। नुकसान सबसे बड़ा ये कि अब तक सब लोग विषय के ऊपर इतना कुछ बोल चुके हैं कि नया कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है आई एम दी ऑड वन आउट, और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं आई एम दी ऑड वन आउट, आई एम नॉट अ ज्यूरिस्ट, आई सी एवरीबडी हेयर यू नो इज अ ज्यूरिस्ट। मैं आर्थिक विषयों पर बात करता हूं, आर्थिक प्रबंधन की बात करता हूं। मैं भारत के एक बहुत माननीय समूह हीरो एंटरप्राइज का ग्रुप सीएफओ हूं, और इससे पहले भारत बेंज ट्रक्स, जो मर्सिडीज बेंज लेकर आए, उसकी शुरुआत करने का श्रेय ईश्वर ने मुझे प्रदान किया। मैं उस कंपनी में एम्प्लॉई नंबर वन रहा। तो आपके साथ अपने कुछ विचार, अपने कुछ अनुभव मैं बांटना चाहूंगा। सबसे पहले तो पिछले दो दिन जो मैंने यहां बिताए, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अलग, इस तरह का अनुभव बहुत कम मिलता है। हम जीवन की दौड़ में, आपाधापी में जिस तरह से चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं बिना कुछ देखे, आप अपने आसपास के विश्व को भी देखिए, जिस तरह की विभीषिकाओं से विश्व आज गुजर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान का एक छोटा सा युद्ध हुआ, इजराइल और गाजा अभी तक लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन अभी तक लड़ रहे हैं। कुछ अलग तरह से ट्रेंड दुनिया में चले। एक वक्त पर हम बात करते थे ग्लोबलाइजेशन की, और अब पिछले कुछ सालों में हम बात करने हैं रीजनलाइजेशन की, चाइना वन पॉलिसी, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैं सबसे पहले इस मैं के आगे जाकर, इस मैं के आगे हमको क्या रास्ता दिखा सकता है, उसका अनुभव मुझे यहां हुआ। मैं जब आप सब लोगों को देखता हूं, और पिछले दो दिनों में जो कुछ मैंने सुना, मैंने कोशिश की जितने ज्यादा से ज्यादा सेशंस में अटेंड कर सकूं मैंने किए, और इतना सब कुछ था कि सब कुछ आत्मसात करना बहुत बहुत मुश्किल था, लेकिन एक बात जो मेरे जहन में मेरे दिमाग में भी आ रही है, बहुत अथर्ववेद का श्लोक है, संगत छध्वम संवदध्वम संवो मनांश जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। हम सब साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, सबके मन समान हों और हम उस सतमार्ग पर चलते हुए उन सत विधियों से वो सब प्राप्त करें जो प्राप्त करने योग्य है। आई थिंक ये बात हमने पिछले दो दिनों में कई बार सुनी, धन कमाना गलत नहीं है, बहुत जरूरी है, लेकिन किस विधि से धन कमाया गया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलित दृष्टिकोण की हमने बात की, और जब मैं बात करता हूं तो मैं इस बात को सिर्फ आर्थिक बात में नहीं लेना चाहता, इसके अलावा हमारे जीवन का समग्र दृष्टिकोण जो है वो इस कसौटी के ऊपर होना चाहिए, यह मेरा मानना है। मैंने कोशिश की है अपने पिछले लगभग 35 से 40 वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा है, कुछ जो सूत्र मेरे रहे हैं और मैं देखता हूं कि वो सूत्र कितने ज्यादा मिलते हैं, मैं इसको बड़े गर्व से बोलता हूं प्राइड, और प्राइड इज एन एक्रोनिम इन दैट सेंस, पैशन। और पैशन सबसे पहले तभी आता है जब आपके जमीन पर पैर गड़े हों, आपका सिर चाहे आसमान को छुए और देखे लेकिन आपके पैर जमीन पर गड़े हों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो बात, रिस्पेक्ट, ये बात कहना बड़ा आसान होता है कि हम रिस्पेक्ट करें, हम जो अपने से ऊंचे ओहदे के लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना हमारी मजबूरी है। मैं अक्सर ये बात अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में अपने लोगों से भी बोलता हूं, रिस्पेक्ट करें उसकी जो आपका टॉयलेट साफ करता है, रिस्पेक्ट करें उसकी जो आपको चाय सर्व करता है, अगर आप वो करते हैं तो वो रिस्पेक्ट है। आत्मवत सर्वभूतेन पश्यति स पंडितः, जो व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं बिना यह देखे हुए कि ऊपर है या नीचे है, वही व्यवहार आप सबके साथ करें। गुरु नानक देव जी ने कहा, मानस की जात सब है एक है पहचान वो, सभी आत्माएं हैं। ये बात हमने पिछले दो दिनों में कई बार सुनी, मैं आत्मा, आप सब आत्मा, और आत्मा से जब दूसरी आत्मा का वार्तालाप हो तो उसमें ऊंच और नीच कुछ ना हो, दैट इज रिस्पेक्ट। तीसरी चीज, मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, हम इकोनॉमिक पार्लेंस के अंदर आर्थिक दृष्टिकोण में कई बारी बात करते हैं इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी की हम बात करते हैं ईमानदारी के संदर्भ में, और ईमानदारी हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल ईमानदारी होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए। मैं एक घटना आपके साथ साझी करना चाहता हूं। बहुत साल पहले हीरो होंडा, उस वक्त हीरो होंडा होती थी जो अब हीरो मोटोकॉर्प है, उसको बेस्ट गवर्नेंस प्राइज मिल रहा था, और उस समय हमारे जो ग्रुप चेयरमैन श्री ब्रजमोहन लाल जी मुंजाल थे, मैंने उनसे जब ये बात पूछी कि आपकी नजर में ये गवर्नेंस, इंटेग्रिटी, ये शब्द इनके क्या मतलब हैं, तो जो विजडम होती है वो कई बार वहां से निकल के आती है। हमारे लिए तो बड़ा सिंपल है कि क्लॉज 49 ऑफ सेबी के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और मैंने टिक लिस्ट, एक चेकलिस्ट बना ली और मेरा काम हो गया। बट उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा अपने दिल पर अपना हाथ रखिए और अपने आप से पूछिए कि जो आप कर रहे हैं क्या ये सही है, जो आप कर रहे हैं इज दिस द बेस्ट यू कैन डू, या ये किसी, आपका कर्म जो है किसी को अनइंटेंशनली हर्ट तो नहीं कर रहा। अगर आप उत्तर आपके पास हैं और उसके बाद जो आप काम करेंगे वो इंटेग्रिटी है, तो इंटेग्रिटी सिर्फ आर्थिक इंटेग्रिटी या बेईमानी नहीं है। इंटेग्रिटी का मतलब है अपने आप से ईमानदारी। मैं सबसे झूठ बोल सकता हूं, अपने आप से नहीं बोल सकता। चौथी बात, डिसिप्लिन। हमने डिसिप्लिन की बड़ी अच्छा व्यवहार देखा यहां, सुबह 3:30 बजे उठना और उसके बाद जिस तरह से हम सारे दिन कार्यक्रम चलाते हैं, एक डिसिप्लिन का एक अंग है और यह डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ने में सहयोग करता है। मैंने हमारे चेयरमैन साहब ने एक किताब लिखी द मेकिंग ऑफ हीरो और मैंने कहा मैं उसका हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूं और उन्होंने जब मुझे इस बात की इजाजत दी तो मैंने कोशिश की कि उसको कम से कम समय में समाप्त करूं और तरीका क्या था, डिसिप्लिन। रोज रात से 10 से 12 बजे तक उस काम को मैंने किया और बहुत जल्दी उस काम को कंप्लीट किया। मैंने देखा है इस विश्व में बहुत से इंटेलेक्ट वेस्ट हो जाते हैं जो डिसिप्लिन नहीं होते। वो डिसिप्लिन भी हमारे समग्र दृष्टिकोण का, संतुलित दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। हम जो काम करते हैं उसके लिए हम बात करते हैं हायर पर्पज क्या है हमारा, ये पर्पज है। हायर पर्पज क्या है? सेवा। गुरु नानक देव जी कहते हैं सेवा करत होए नहीं कामी तिसको होत परापत स्वामी, कि जो निष्काम सेवा करता है उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो निष्काम सेवा करता है वो अपने आप को पहचानता है, अपने वजूद को पहचानता है। हमने पिछले 2 दिनों में एक और बात सुनी इमोशनल क्वोशेंट की, ईक्यू। ईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू, कि पिछले कुछ डिकेड्स आईक्यू के रहे और अब ईक्यू की बारी है। मेरे पास कई बार लोग बहुत तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, स्पेशली चेंज मैनेजमेंट के टाइम पर जब हम नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उस वक्त चेंज मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो मैं अक्सर ये बात करता हूं कि इस चेंज मैनेजमेंट को करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। नंबर 1 पीपल, नंबर 2 पीपल, नंबर 3 पीपल। इफ यू कैन मैनेज पीपल यू कैन चेंज एनीथिंग, यू कैन ब्रिंग एनी चेंज इन द वर्ल्ड। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी कामना है कि हर व्यक्ति जो यहां खड़ा है, स्पेशली लीगल परिवार से और लीगल डिस्प्यूट से और बहुत सारे के जब कभी हम मर्जर्स करते हैं, एक्विजिशंस करते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत ज्यादा हमारा सामना होता है, तो हम सभी उन बातों को जो हमने 2 दिन में यहां या 3 दिन में यहां सीखा उसको आत्मसात करें, उसके अनुसार करें। अभी हमारे वक्ताओं ने भी बहुत अच्छी तरह से उस बात को आगे रखा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें, अपनी समस्याओं को समझें, अपने आप को अध्यात्म की दृष्टि से देखें कि किस तरह से उन समस्याओं से हम पार पा सकते हैं, किस तरह से हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करें, नेगेटिविटी को बिल्कुल पीछे छोड़ दें। मैं अक्सर बोलता हूं तोड़ डालो रूढ़ियों के दग्ध बंधन, हवा का सैलाब अब चहुदिश बहा दो, 2 नहीं 10 उंगलियों से कब्र खोदो, सड़क के उभरे हुए पत्थर दबा दो। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और बहुत अच्छा समय दिया, बहुत अच्छा हमने सीख ली। अंत में नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भणे सर्वत का भला, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जोगिंदर सिंह जी का। आपने कितना सिंपल रीति से बताया कि हमें सम्मान सभी का करना है, जो हमसे व्यवसाय में, जो हमसे पद में छोटे हैं उनका सम्मान हम दिल से करते हैं वो सच्चा सम्मान है। अपने से औहदे में बड़े का सम्मान करना तो हमारी मजबूरी भी हो सकती है। आपने बताया जीवन में आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन को हमें अपनाना होगा। आपने बताया जीवन में नकारात्मकता से बचना है तो हम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जोगिंदर सिंह जी का। अब मैं निवेदन करता हूं बीके निशा दीदी से, जो राजयोगा टीचर हैं द्वारका दिल्ली में। आप जो है बाल्यकाल से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सदस्य हैं। 27 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं और जूरिस्ट विंग की कार्यकारी सदस्य हैं। आपने लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेज हॉस्पिटल द्वारका कोर्ट सब में अपनी सेवाएं दी हैं। द्वारका दिल्ली में वर्तमान समय में सेंटर इंचार्ज हैं आदरणीय बीके निशा दीदी। ओम शांति।
सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित सभी स्नेही भाई और बहनों का दिल से अभिवादन है, सम्मान है। हम 3 दिन से यहाँ पर जूरिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं और जब वहाँ से आए थे तो यही था कि हम माउंट आबू जा रहे हैं और यहाँ पर 3 दिन में हमारी बहुतों से जान पहचान भी अच्छी हो गई है, आपस में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो गया और फोन नंबर भी एक दूसरे के शेयर किए होंगे। बार बार हमें यही पक्का कराया जा रहा है कि इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति में एक आत्मा हूं और मेरे पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। हम सभी अगर शारीरिक रूप से देखें तो सभी समान हैं, रंग रूप अलग है लेकिन शरीर तो सबके एक जैसे हैं, तो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर जब उस पिता परमात्मा के साथ हमें अपना संबंध जोड़ना है, उनके साथ हमें अपना रिलेशन बनाना है, तो परम पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है और हम सभी भी पॉइंट ऑफ लाइट हैं। जब इस स्वरूप को हम प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं तो उनके साथ हमारा सहज ही रिलेशन पक्का हो जाता है। यहाँ से हम जाएंगे सभी अपने जो प्रोफेशन है, कार्यस्थल है, वहाँ पर जाएंगे, पर हमारा पहला रिश्ता उस पिता परमात्मा के साथ है। इस रिश्ते को, इस रिलेशन को यहीं से पक्का करके जाएंगे कि मेरे सारे रिश्तों में फर्स्ट रिलेशन वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी संतान हूँ, क्योंकि रिलेशन में निश्चिंतता होती है, अपनापन होता है, सहजता होती है, सरलता होती है और वो रिश्ता कितना समीप का है उस पर डिपेंड करता है। तो परमात्मा पिता हैं, मैं उनकी संतान हूँ, ये तो बहुत समीप का रिलेशन है। ये रिलेशन हमें सदा याद है तो नेचुरली हम किसी भी स्थान पर हों, कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम हो, हम उस रिलेशन को जब बार बार पक्का करते हैं तो हमें अपनेपन का, एक सुरक्षा का अनुभव हमेशा होगा। अभी हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। सभी स्ट्रेट होकर बैठेंगे, आंखें अभी तो पक्का हो गया है खोलकर बैठेंगे, और जैसे जैसे मन को विचार देते जाएंगे उन्हीं विचारों के साथ अपने मन को स्थिर करके, जो हम सभी आत्माओं का घर पिता परमात्मा का घर है, वहां चलेंगे। मस्तक के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा एक चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर की मालिक एक आत्मा, यही मेरा रियल परिचय है, यही मेरी पहचान है कि मैं इस शरीर की मालिक हूं। और मस्तक के बीच विराजमान हूं आत्मा की शक्ति, मन है, और इस मन के द्वारा धीरे धीरे सभी संकल्पों को एकाग्र कर एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है, गुणों का सागर है, वो इस सृष्टि रंगमंच के डायरेक्टर हैं, और मैं आत्मा इस सृष्टि पर एक एक्टर के रूप में अभिनय कर रही हूं अपने मन के द्वारा। आवाज से परे, चांद तारों से पार, उस प्रकाश की दुनिया में जहां चारों तरफ सुनहरा प्रकाश प्रकाश है, और मुझे आत्मा के पिता शिव बाबा मेरे सामने है, और मैं आत्मा मन बुद्धि के द्वारा अपने आप को पिता परमात्मा के सामने अनुभव कर रही हूं। वो शांति के सागर है, और शांति की असीम किरणें, शांति की शक्ति मैं आत्मा महसूस कर रही हूं। इस शांति में कितना हल्कापन है, कितनी निश्चिंतता है। मेरा मन शांत हो गया है परमपिता परमात्मा मेरे पिता है, और मैं उनकी संतान हूं। ये रिश्ता कितना प्यारा है। इस रिश्ते में केवल निस्वार्थ प्रेम है, अपनापन है, इसी अनुभव के साथ मैं आत्मा इस साकारी दुनिया में मस्तक के बीच चमक रही हूं। अपने शरीर में अपने आप को गहरी शांति में, सुख से भरी शांति में अनुभव कर रही हूं। शांति के प्रकंपन मेरे द्वारा चारों ओर फैल रहे हैं। मेरे संकल्प स्थिर हो गए हैं। एक ही संकल्प है कि वो मेरे पिता है और मैं उनकी संतान हूं। ओम शांति शांति। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद वीके निशा दीदी का, आपने एक रूहानी नशा चढ़ा दिया। परमपिता परमात्मा से हमारा जो संबंध है वो पूरा स्थापित करवा दिया। बस इसी का अभ्यास हमें अपने पूरे जीवन में आगे करना है, ये दीदी ने समझाया सिखाया है। इन अनुभवों को आप अपने हृदय में संजो कर अपने प्रोफेशन में जरूर अमल करेंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ। अब मैं ब्लेसिंग्स देने के लिए राजयोगिनी बी के लता दीदी को बुलाता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपने यहाँ पर सभी को आशीर्वचन देंगे। लता दीदी नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग के हैं और ब्रह्मा कुमारीज के लीगल एडवाइजर हैं। लगभग 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज के में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो लता दीदी जी,
ओम शांति। परमपिता परमात्मा और परमात्मा की सभी प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित हमारे वक्तागण और आप सभी बहनों और भाइयों, एक्चुअली मैं वैलिडिटी तो कल था मगर इस समय हमारे राजयोगी सूरज भाई को ये सेशंस लेने थे 6 से 7:30 का, मगर कुछ कारणवश वो आज उपस्थित नहीं हो सके तो हमने ये वैलिडिटी सेशन ही आज कर लिया, क्योंकि कल फिर आपको पूरा दिन घूमने के लिए आराम से मिल सकेगा। संडे होने के कारण माउंट में काफी रश होता है तो आप सभी को घूमने में भी समय लग जाएगा, तो हमने वैलिडिटी को पहले ही समाप्त कर दिया तो आप फ्री हो सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि कल कुछ भी नहीं है, कल हमारा अमृत वेला मेडिटेशन भी रहेगा ही, मगर ये बताते हुए मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि इतना समय आप निकाल के इतनी मेहनत करके यहाँ आए हो मगर अमृत वेले मेडिटेशन में 15-20-25 जन ही होते हैं और मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहूंगी या अपना अनुभव सुनाना चाहूंगी कि 24 घंटे में से 23 घंटा मेडिटेशन और अमृत वेले का 1 घंटा मेडिटेशन ज्यादा हो जाता है। 1 घंटे में जो प्राप्ति होती है वो 23 घंटे में भी नहीं हो सकती है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अभी और भी 2 दिन बाकी हैं तो अमृत वेला मेडिटेशन जो सुबह 4:15 होता है वो अवश्य करें। 1 दिन तो अनुभव करके देखें कि उसको अमृत वेला क्यों कहा जाता है,
समय कौन सा अमृत हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए कल से आप सभी को रिक्वेस्ट होगी कि सुबह अमृत वेला आए, गाइडेड मेडिटेशन होता है, कमेंट्री सहित आपको बहने गाइड करके मेडिटेशन कराएंगी, ताकि आपको अभी नए हैं तो गाइडेंस मिलेगा कि किस प्रकार से हमें परमात्मा से वार्तालाप करना है। मेडिटेशन इज नथिंग, जस्ट टॉकिंग विद गॉड। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रही हूं, उसी प्रकार परमात्मा से आप बातें करके देखो। वैसे तो सारा दिन हम करते ही रहते हैं, अभी तो हम लोगों को हैबिट हो गई है। इस समय आपसे बातें करते करते भी परमात्मा से भी बातें हो रही हैं। परमात्मा से ही कहा जा रहा है कि आपके बच्चे आए हैं आपके पास, तो आप जो भी उन्हें देना चाहो वो देते रहो। जो शक्तियां जो गुण से भरपूर करना चाहते हो, बाबा आप उनको सब गुणों से और शक्तियों से भरपूर करके भेजो। मैं परमात्मा से यही कह रही हूं कि आप विश्व परिवर्तन करने के लिए आए हैं, तो जिन बच्चों ने आपके इनविटेशन को स्वीकार करके आपके घर पर आए हैं, तो उन बच्चों को भी ऐसी अनुभूति कराएं कि वे इस परिवर्तन की चेन में अपना हाथ ज्वाइन करके परिवर्तन हो और विश्व को भी परिवर्तन करें। आप सभी परिवर्तन होने के लिए ही आए हैं ना यहाँ पर, हाँ? किस लिए आए हैं? परिवर्तन होने के लिए आए हैं ना। तो डिस्पैच का टॉपिक तो अभी जो वैलिडिटी का है, रोल ऑफ एथिकल वैल्यूज इन जस्टिस डिस्पेंशन। जस्टिस इट्सेल्फ मीन्स फुल ऑफ वैल्यूज। अगर हमारे अंदर वैल्यूज नहीं होंगी तो वी कान डू जस्टिस। जस्टिस कैन ओनली बी डिलीवर्ड इफ यू हैव वैल्यूज, अदरवाइज जजमेंट्स आर गिवन। टू थिंग्स वी हैव, जजमेंट्स एंड जस्टिस। If there are no values, it is only judgment, and if there are values, it is justice. And justice means both the parties, the loser and the winner, both must be happy. That is justice. जैसे भाई साहब ने भी कहा और हमने भी कहा, ना दुख देना है ना दुख लेना है। एक को तो लूजर होना ही पड़ेगा जस्टिस में और एक को विनर होना ही पड़ेगा, मगर अगर प्रॉपर जस्टिस हो रहा है तो लूजर भी सेटिस्फाइड होता है कि हाँ, मेरी इस गलती के कारण ही मैंने ये लूज किया है। जस्टिस, जस्ट एंड आइज। Justice can be done only when your mind is so cool like ice. Then it is just, means it is fair and proper. That is what is justice. So this session of a year, आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए बुलाया गया है ताकि हम हमारे जीवन पे हर कदम पे अपने साथ जस्टिस कर सकें। हमें हर कदम पे जस्टिस करने पड़ता है अपने साथ भी। सबसे पहली बात जो यहां सिखाई जाती है, जो बताया गया है आप सभी को, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं जो अमर है, अविनाशी है, अजर है, न जलती है, न गलती है, न मरती है, न सुखती है, मैं आत्मा हूं। और जब हमारे अंदर मैं आत्मा हूं ये निश्चय बैठता जाता है और हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा के ओरिजिनल 7 वैल्यूज हैं अपने अंदर, इनबिल्ड वैल्यूज इन द आत्मा विथ अ स्मॉल फॉर्मूला KP2 हाई लो BP। के स्टैंड फॉर नॉलेज, ज्ञान। द फर्स्ट पी स्टैंड फॉर पीस, द सेकेंड पी स्टैंड फॉर प्यूरिटी, हाई H हैप्पीनेस, लो L लव, B ब्लिस एंड P पावर। Where there is knowledge, there is peace and purity. When you have knowledge, you have peace, you have purity, you are happy. तीन शक्तियां मेरे पास आ गई तो मैं खुश, happy हो जाती हूं. I become happy. And when I am happy, I start loving everyone. तो खुशी में क्या होता है, हम सबसे प्रेम करते हैं ना, इसीलिए भाई साहब ने क्या कहा कि जब आप बहुत खुश होते हो ना तब किसी से वादा मत करो, मगर जब बहुत खुश होते हैं ना सभी के प्रति प्रेम बहता रहता है हमारे अंदर से। अब मेरे पास 5 गुण हो गए, नॉलेज, पीस, प्यूरिटी, हैप्पीनेस, लव। क्या होगा इसके बाद? ब्लिसफुल, आनंद ही आनंद हो जाएगा हमारे पास। कितना आनंद से भरपूर हो जाते हैं हम, कुछ भी प्राप्ति बाकी नहीं रही ना जीवन में, जो चाहिए वो मिलता जा रहा है सिर्फ एक आत्मस्थिति में टिकने से। सारी वैल्यूज मेरे अंदर आ गई, इनबिल्ड है। तो आप कहेंगे जब वो इनबिल्ड है तो अभी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उनके ऊपर विकारों की धूल के पर्दे लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर जमे हुए हैं। जन्म मरण के चक्कर में आते आते हम अपने आप को भूल गए हैं कि मैं कौन हूं। नोबडी नोज द आंसर फॉर दिस कि मैं कौन हूं। ये तो परमात्मा ने स्वयं धरा पर आकर हमें ये शिक्षा दी, हमें ये बताया कि तुम कौन हो। और वो सही पहचान मिलने के बाद जब मैंने आपको निश्चय किया कि हां मैं ये शरीर नहीं एक आत्मा हूं, तो जैसे आईने के नजदीक जाते हैं, दूर से देखते हैं तो दिख नहीं दे रहा है, नजदीक जाते जाते मालूम पड़ता है आईना पे बहुत धूल है, और जब धूल साफ करते हैं तो आईना में अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से जब परमात्मा ने आके पहचान दी और मैंने अपने आप को आईने में देख के धूल के लेयर्स जो लगे हुए थे एक एक मिटाने शुरू किए, तब मेरी आत्मा की चमक और उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो मुझे दिखाई देने लगी कि मैं कौन हूं। और जैसे जैसे उन वैल्यूज के ऊपर मैंने अपना अटेंशन केंद्रित किया, वैसे वैसे वो वैल्यूज मेरे अंदर और भी चमकने लगी और मैं हरेक के साथ स्नेह प्यार आनंद प्रेम से व्यवहार करने लगी। कि जो मेरे पास है वही तो मैं दूंगी और मैंने अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़कर अपनी वैल्यूज को और भी बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ दो हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगी। एक तो रात को सोने से पहले सारा कारोबार करके जब आप बेड पे जा रहे हैं, बैठ गए हैं और अब सोने ही वाले हैं, उस समय 5 मिनट आप परमात्मा से वार्तालाप करें, अपनी चेकिंग करें, मैंने सारे दिन क्या किया, मैंने कितनों को दुख दिया, कितनों को सुख दिया, कितनों को दुआएं दी, कितनों से सुख लिया, कितनों से दुआएं प्राप्त की, आज मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया, मैंने किसी को गलती से भी दुख तो नहीं दे दिया। ये चेकिंग करते हुए अपने आप से भी क्षमा मांगे और जिसके साथ हमने किया है किसी को दुख देने का कार्य, गलतीवश भी अगर मेरे से हो गया है, क्योंकि कर्म फिलॉसफी इज वेरी माइन्यूट, अगर मैं एक संकल्प भी कर लूं, मैंने प्रैक्टिकल में नहीं लाया मगर मैंने संकल्प भी कर लिया ना कि इसका बुरा हो जाए, दैट मीन्स दैट कार्मिक अकाउंट हैज बीन मेड बाय मी, उसका मेरे रिटर्न आना ही है मेरे पास, क्योंकि संकल्प से तो मैंने कर्म कर लिया ना। तो ये चेकिंग करते हुए रात को अपने आप से क्षमा मांगे, जिनके प्रति हमने ऐसा कुछ किया उनसे क्षमा मांगे, उनको थैंक यू करें कि थैंक यू आपने मुझे क्षमा किया, और उनसे कहें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। क्योंकि आज के समय पे ज्यादातर क्या देखने में आ रहा है, सब डिप्रेशंस और टेंशन, इसका कारण क्या है? यही है कि हम दुख ज्यादा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमारे पास रिटर्न आके हमको ही टेंशन दे रहे हैं और हमें ही डिप्रेशन में ला रहे हैं। इसीलिए क्षमा मांगो, थैंक यू करो, सॉरी करो और सभी से प्रेम करो। ये सिर्फ मनुष्यों से ही नहीं है मगर आप मनुष्य आत्माओं के साथ साथ सृष्टि से, प्रकृति से, पांचों तत्वों से भी, क्योंकि ये सब हमारे जीवन के लिए सहयोगी हैं और कहीं ना कहीं हम इनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करते हैं जिसका असर हमारे ऊपर होता है। इसीलिए सभी से क्षमा मांगते हुए अपने आप को रोज रात को हल्का करके फिर सो जाएं, बहुत ही अच्छी गहरी नींद आएगी और अमृत वेले आप उठने में सक्षम हो जाएंगे। अभी क्या होता है, हम सोते थे हो मगर नींद पूरी नहीं होती है और इसीलिए सुबह उठना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं तो यही आश रखूंगी कि मेरे सारे भाई बहने अपने जीवन को एक कमल फूल समान खिलता हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल और लवली बनाएं, रात को अपने आप से ऐसे बातें करते, परमात्मा से क्षमा मांगते हुए सो जाएं और सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें, परमात्मा से कहें मुझे पॉजिटिव शक्तियों से भर दें, आज मेरे से कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे, इस तरह से जिसका आदि परमात्मा से शक्तियां लेने का होगा और अंत में फिर से परमात्मा से क्षमा मांग के अपने आप को हल्का करना होगा, तो जब आदि और अंत इतना श्रेष्ठ है तो मध्य तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो ही जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बस थोड़ा सा ही प्रोग्राम बाकी है, आज जल्दी पूरा हो जाएगा। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगिनी बीके लता दीदी का, आपने कितने सुंदर शब्दों में बताया कि जस्टिस देने के लिए वैल्यूज होना बहुत जरूरी है और सबसे पहले हमें अपने आप के साथ, स्वयं के साथ जस्टिस करना जरूरी है और आत्मिक निश्चय बनाए रखने के लिए, आत्मिक निश्चय बनाए रखते हैं तो वैल्यूज अपने आप ही आते हैं। और दीदी ने बताया कि रात को सोने से पहले हमें अपने आप की चेकिंग करनी है, सबको क्षमा करना है और सबसे क्षमा मांगनी है, सबका धन्यवाद ज्ञापित करके फिर परमात्मा को सब कुछ सौंप के अगले दिन के लिए उन्हें धन्यवाद देना है। अब मैं निवेदन करता हूँ बीके मनीष भाई जी से, वो अपना वोट ऑफ थैंक्स आप सभी को देंगे। ये भी एक सुनहरी परंपरा है कि जो मंच पर आसीन अतिथि हैं और सभा में विराजमान अतिथि हैं, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने की एक सुनहरी परंपरा को निभाते हुए मैं निवेदन करता हूँ बीके मनीष भाई जी से कि वो सबको वोट ऑफ थैंक्स दें।
ओम शांति। तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस अपने समापन सत्र की ओर बढ़ गई है और ये समापन एक नई शुरुआत को जन्म देने वाला है। कल आप जब घर जाओगे तो जो आपने शुभकामनाओं का खजाना, दुआओं का खजाना अपने पास जमा किया है, मैं आशा करूंगा कि आप जरूर उसे बांटेंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि अपने जीवन में गुणों की, वैल्यूज की एस्टैब्लिशमेंट करेंगे जिससे दूसरों का भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। तो मुझे सेवा दी गई है कि मैं सबका धन्यवाद करूं, तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद जिन्होंने ऐसा सुंदर कार्यक्रम रचने की हम लोगों को प्रेरणा दी और वो कार्यक्रम रच पाए और आप सब उसमें आ पाए। साथ ही मैं कार्यक्रम के अतिथियों का, तो आज के कार्यक्रम के अतिथियों का भ्राता अमित पाल जी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं बलिया से, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। एक एक्सरसाइज आपसे भी करवाना चाहूंगा कि जब जब हम धन्यवाद करें तो आप अपने हाथों में बहुत सारी ऊर्जा भर लें, क्योंकि आपका भी नंबर आने वाला है इसी ऊर्जा के साथ। साथ ही भ्राता रमणीकांत पटनायक जी जो उड़ीसा हाईकोर्ट से पधारे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। भ्राता एमवी रमेश जी जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं तेलंगाना में, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और भ्राता जोगिंदर सिंह जी जो हीरो इंटरप्राइजेस से पधारे हैं, उनका भी धन्यवाद। और साथ ही इस कार्यक्रम में हमें अच्छा सा मेडिटेशन कराने के लिए आदरणीय निशा बहन जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। अगर जिसकी अनुभूति अच्छी हुई हो तो मैं समझता हूँ एक क्लैपिंग उनके लिए और ज्यादा होनी चाहिए, अपने लिए भी ज्यादा होनी चाहिए। और आप सबको एक्सपीरियंस के लिए एक फॉर्म भर के देना है, आपको आपके सामने आ जाएगा। तो आपका कैसा अनुभव रहा, हिंदी इंग्लिश या जो भी भाषा आपको अच्छी लगे उसमें जरूर लिख के हमारे पास जमा करवाएं। हमारा ऑफिस है नीचे, तो वहां आप जमा करवा देंगे। और साथ ही आज के कार्यक्रम में हमें ब्लेसिंग से सराबोर करने के लिए आदरणीय लता दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्राइमरली लता दीदी ही इस सारे कार्यक्रम की संरचना करती हैं और वो सबको इकट्ठा करने में पूरा योगदान देती हैं। सारे बातों को देखते हुए, समझते हुए, करते हुए भी वो हमेशा तत्पर रहती हैं सेवाओं के लिए। तो मैं जोरदार तालियों की मैं आपसे आग्रह करूंगा। और आज एक ग्रुप को हमने एक आनंद वाली ताली सिखाई थी, तो क्या आनंद वाली ताली वाली बजाना चाहेंगे? अपना हाथ ऐसे करिए, मतलब हथेलियों को मिलाइए और सिर्फ उंगलियों को बजाइए। देखिए, बहुत तेज तेज मारिए तो आपको ना लगेगा जैसे कोई तितली उड़ रही है। और देखो, इसकी खासियत यह है कि आपके दांत मोतियों की तरह खिल जाएंगे। और साथ ही हमारे प्रदीप भाई का, जिन्होंने इतना अच्छा मंच संचालन किया और जो बहुत बढ़िया से सारी कार्यक्रम को चला रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। अच्छा, प्रदीप भाई के लिए आपकी तालियां कम है। अच्छा, ये फॉर्म आपके हाथ में आ गया, इसलिए हम अपनी आदरणीय बहनों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो जजिस भाई साहब को लेके आए हैं, जो अतिथियों को लेके आए हैं पूरे देश भर से। तो सभी बहनों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में जो नींव के पत्थर हैं, जिनको जो दिखाई नहीं देते लेकिन जो हमेशा तत्पर रहते हैं, जैसे एकोमोडेशन, जहां आपका आवास निवास हुआ, जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग का हुआ, जैसे साउंड है, ऑडियो है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफी है, ये सारे जो डिपार्टमेंट है भोजन बनाने वाले, हम उन सब का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और उनके लिए तो जोरदार आपकी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वही व्यवस्था प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हमारी जूरिस्ट कमेटी का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो जूरिस्ट की टीम लगी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया एक बार सामने आ जाएं तो सब उनका दर्शन भी कर लें और सब एक दूसरे का दर्शन कर लें, जो इतनी तत्परता से सेवाएं दे रहे हैं। हमारी सारी बहनें, सारे भाई जो जूरिस्ट विंग से जुड़े हुए हैं, आज ये जो मंच पे हैं, मंच के पीछे हैं, जो सामने हैं, वो भी आ जाएं। उन सबको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि वो अथक सेवा दे रहे हैं हम सबके लिए। आइए, आइए जी, आइए, सब लोग आ जाइए, आइए। अब मैं समझता हूँ जैसे ये लोग खड़े हैं तो आप भी खड़े हो जाइए, आपके भी तैयारी हो जाएगी। सारे भाई, सारे बहनें और सारे सेवाधारी एक साथ एक मंच पर एक दूसरे के सामने हैं, तो हम सबका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आवाज थोड़ी कम सी नहीं लग रही है? इसके बाद जो कार्यक्रम होने वाला है, जैसे रमणीकांत भाई साहब ने बताया था, वो ब्रह्मा भोजन, इसके बाद अगला कार्यक्रम ब्रह्म भोजन का ही है, जहां हम सब जाएंगे। तो हम सभी अपनी पूरी टीम का बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। कैमरा ले रहा तो इनका एक फोटो भी खींच ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यादें ताजा रहेंगी जब भी देखेंगे। और हमारे जो बहुत ही अथक सेवाधारी है नाथमल भाई साहब, जो सभा के बीच में बैठे थे, अभी पता नहीं है या चले गए, तो नाथमल भाई साहब, उनके लिए तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वो ना हमेशा जजिस की सेवा में तत्पर रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं, मीडिया में सेवाएं करते हैं, और जिनको मानद उपाधि भी मिली है डॉक्टरेट की, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और ईशु बहन है ओआरसी से, कोऑर्डिनेटर है ओआरसी लीगल की। हाँ, श्रद्धा दीदी जो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, आ जाइए कपिल भाई, आ जाइए, आ जाइए सब लोग, आओ आओ सब सामने। हाँ, स्टेज वाले भी आ जाइए, जो ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं उन सबका देखिए, जो बॉक्स इधर है दोनों साइड देखिए, ये बहुत अच्छी सेवाएं यहाँ से मिलती हैं। बिल्कुल सेंटर में जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, जो देश दुनिया में लाइव होता है, सब ये सेवाएं यहाँ मिलती है। तो हम उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक नई शुरुआत के लिए हमने प्रस्थान करना है, कल और परसों आप यहाँ का आनंद लेंगे और उसके बाद पूरे देश में जहां जहां से आप आए हैं, एक फूल आप यहाँ से खुशबूदार बन के जा रहे हैं। और आशा करता हूँ कि बहुत सारे फूलों को आप जन्म देंगे, औरों के जीवन में भी खुशियां आएंगी, महक आएगी और आनंद आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बी के मनीष भाई, आप एडवोकेट और जूरिस्ट विंग के मेंबर हैं न्यू दिल्ली के। और अभी मनीष भाई आप सभी को एक शपथ दिलवाएंगे, वैष्णव मुक्ति की शपथ, तो वो जरूर करके जाएं।
जाने वाले भाई सभी रुकिए, एक आज ना विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस है। मैं मान के चल रहा हूँ कि हम सब तंबाकू से वैसे ही मुक्त हैं, कोई व्यसनों का अधीन नहीं होगा, फिर भी पूरे देश में और दुनिया में पर्व मनाया जा रहा है कि नशा मुक्ति का, तो इसकी एक हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो आप एक अपना सीधा हाथ आगे कर लीजिए ऐसे और खड़े हो जाइए, ये पैरेलल हाथ, आप मैं बोलता रहूंगा आप मन मन में रिपीट कीजिएगा, मैं जानता हूं कि तंबाकू से हो रही मृत्यु तंबाकू के सेवन न करने करके रोका जा सकता है। मैं जानता हूं कि शराब, ड्रग्स, दुर्घटना, एड्स, हत्या और आत्महत्या मिलकर जितने लोगों की मृत्यु होती है उससे अधिक लोगों की मृत्यु तंबाकू जनित बीमारियों से होती है। मैं जानता हूं कि तंबाकू कंपनियां मुझे तंबाकू सेवन करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। मैं जानता हूं कि धूम्रपान करने वालों में से 88% 18 वर्ष से कम आयु के लोग होते हैं। मुझे तंबाकू कभी नहीं लेना है, मुझे कभी तंबाकू नहीं लेना है और उसके कोई बाई प्रोडक्ट भी यूज नहीं करने हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
हाँ हाँ एक मिनट बाबा की
सौगात देनी है कि नहीं? अभी हमारे मनचासीन अतिथियों को सौगात देंगे, गिफ्ट देंगे और दो मिनट फिर अपन हम परम पिता परमात्मा शिव की याद में बैठेंगे, फिर ये कार्यक्रम समाप्त होता है। दो आपसे निवेदन है, दो मिनट बैठ जाएं। आप सब तालियों से अभिवादन करेंगे, हमारे मनचासीन अतिथियों को सौगात दी जा रही है। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा और यहां से कुछ सीख के समझ के जा रहे हैं आप लोग और अपने जीवन में अमल करेंगे। अब दो मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं। ओम शांति।